है आज तो मंडे है, आज बंद है लेकिन कल पहुँच के करना है ना सबको। बिल्कुल बिल्कुल लग सकती है, लगा देंगे मैं लगाने नहीं कहा। आप लोग सब ऐसे हो गए जैसे वो सीढ़ी सुन रहे हैं, रोज ऐसे ही होता है, थोड़ा सा घुमा दो घर में घर हो जाए। हाँ हम सीढ़ी सुना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा हाँ ऐसा नवीन भाई बिल्कुल परफेक्ट। चलिए शुरू करता हूँ मंगला जीवन से। नमो हरिहंता, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सर्वसाम। ओंकारयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चेद ओंकारो नमः। अभ्यां चन्द्रानां ज्ञानान्यतदर्शनं चक्षुरं मृदमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः समयकाराय स्वानुभूत्याय चाकते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। मैंने स्वानुभूति मिले जी, मम स्वानुभूति मिले जी, फिर मन दारा ने सुख आनंद अमृत से भरी, समता प्रवाह बहावे जी, राधा दिज कलप तोंगे, माँ सरस्वती प्रतिभावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ के, दृष्टि निज में जोड़ के। ग्रंथाधिराज समय सारी है आचार्य कुंडी कुंड स्वामी जी, यह बहुत उत्कृष्ट रचना, अनेकांश वस्तु व्यवस्था का उद्घोष करने वाली त्यागवाद नई जनवाणी का ये प्रकरण चल रहा है। किसी भी प्रकार का कोई एकांत हमारे हृदय में न रह जाए, ऐसे अनुकांत का पोषण करने वाली ये गाथाएं और ये चर्चा चल रही है। इन गाथाओं में दो महत्वपूर्ण प्रकरण आ गए यहाँ, जिनमें सर्वथा अकर्ता मानने का निषेध किया और ऐसा निषेध करके सांख्य मत का खंडन किया। फिर कहा कि जो करता है वो नहीं भोगता, जो भोगता है वो नहीं करता, और करता अलग है और भोगता अलग है। ये सब जैनियों के विरोधी लोग हैं। तो मूल गाथा में ऐसा प्रयोग किया, अर्हत मत विरोधी। अर्हत मत किसका नाम है? ये न्याय का प्रकरण है ना, तो न्याय शास्त्रों में जैनियों के लिए अर्हत शब्द का प्रयोग किया है। अर्हत मत वाले ऐसा कहते हैं जैन। ये जैन शब्द कहाँ से प्रारंभ हुआ रजनी भाई? रिसर्च का विषय है। आप तो बहुत सोच सोच करते रहते हैं, करवाते रहते हैं, है? नहीं मतलब ये विद्वानों की चर्चा होनी चाहिए इस पॉइंट पर भी कि आखिर हम लोग जैन हैं, तो ये जैन शब्द कब से पॉपुलर हुआ, कब से प्रचलन में आया? क्योंकि न्याय शास्त्रों में, आगम में, आचार्यों के वचनों में, दूसरे धर्म दर्शन वालों के माध्यम से हमारे दर्शन के लिए या तो त्यागवादी शब्द का प्रयोग करते हैं वो लोग, कहते हैं त्यागवादी ऐसा कहते हैं, त्यागवादी ऐसा कहते हैं, त्यागवादी ऐसा मानते हैं, त्यागवादी ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग कौन है? त्यागवादी। या फिर दूसरा एक शब्द मिलता है, वो है अरहत मत। अरहंत भगवान के मत वाले, अरहत मत। यहाँ आचार्य कुंजकुंज स्वामी ने मूल गाथा में ये गाथा पन्ने 347 और 348 और 348 जो दो गाथाएं अपने देखी है जिसमें उन्होंने बौद्ध मत का खंडन किया है, वास्तव में सांख्य और बौद्ध मत के खंडन की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम लोगों में जो सांख्य वाले बन के बैठ गए ना, हम लोगों में कुछ जो बौद्ध मत वाले हो गए हैं उनको समझाने के लिए जरूरत थी। प्रचंड सांख्य, प्रचंड बौद्ध, मैंने कल रात के प्रवचन में ऐसा कहा था, प्रचंड सांख्य, प्रचंड बौद्ध, जिनकी मान्यताएं बौद्ध वालों जैसी है। अरे बाप, उनका उपकार है, उनके उपकार से हमारा भला हो गया, ऐसा मान लें, इनके करने से ऐसा हो गया, इसका फल ये भोग रहे हैं, इसका फल ये भोग रहे हैं। उन्हें सब लोग जैनियों के नाम पर जैनियों का विध्वंस करने वाले, जैन मत का खंडन करने वाले, जैसे कहते हैं ना वो घुसपैठिए, जैसे मिल गए दूसरे इधर आकर के मिल गए घुसरे इसको विध्वंस करने के लिए। तो ऐसे ही जैनियों में जैन लोग ऐसे मिल रहे हैं जो लोग जैन धर्म का ही नुकसान पहुंचाने वाले। अभी देखो हम लोग कुछ ऐसे दूसरे लोगों के लिए तो कहते हैं, जो मित्र पक्ष वाले लोग देखो भाई, उनके लिए हम कहते हैं कि ये लोग जैन धर्म का नुकसान कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं क्रियाकांड, इस मंत्र की जाप करने से ऐसा भला हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा करो, इससे आपके घर में शांति रहेगी। तब जैन धर्म ने क्या बातें ले आए हैं कि जैन वेद धारण किए हुए जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं जैनियों को। हम लोग बोलते हैं ना ऐसा, उनको जैन धर्म की खबर नहीं है, अकर्तावाद की खबर नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इस मूल सिद्धांत को वो जानते रहते हैं। पूरा व्याख्यान उन लोगों का सुन लो तो पूरे व्याख्यान में आत्मा शब्द नहीं आए क्या? मैं बर्फों तक बोले रहे आत्मा की चर्चा नहीं है, और सारी चर्चा कौन सी, आपके घर में कैसे शांति रहेगी, आप पैसा कैसे कमा सकते हो, आप इस मंत्र का जाप करो इससे ये होगा उससे वो होगा, तो उन लोगों के बारे में आपकी क्या धारणा है कि ये लोग जैनियों के नाम पर जैन धर्म को खत्म कर रहे हैं, इनको पता नहीं है क्रियाकांड के नाम पर हवन पूजा न मालूम क्या क्या अनुष्ठानों के नाम पर जैन धर्म खतरे में, जैनियों को खतरा है ऐसे जैनियों से, ऐसा हम लोग बोलते हैं। अब सुनो, अब कुंजकुंज स्वामी हमारे बारे में क्या कह रहे हैं? कुंजकुंज स्वामी हमारे बारे में ये कह रहे हैं कि तुम लोगों से भी खतरा कम नहीं है, क्या बात कर रहे हो? हमने ऐसा क्या किया? बोले तुम लोग काम के मतलब उनका मत का पोषण कर रहे हो जैनियों की सभा में बैठकर, क्या कर रहे हो? अरे तुम बौद्ध धर्म वालों का पोषण कर रहे हो जैनियों की सभा में बैठकर, ये एकांत वास के संदर्भ में देखो भाई, ज्ञान ज्ञान को जानता है, आत्मा जायती है, आत्मा रास्ता करता नहीं है, ये सब बातें परम सत्य है क्या? ये बातें बिल्कुल श्रद्धा के जीवन पर उतरनी चाहिए, लेकिन किसके लिए? जो व्यक्ति पहले इस सत्य को स्वीकार करता है कि राग का कर्ता भी नहीं है। अच्छा, तो राग का तो अपने आप को अकर्ता सिद्ध मानता हूँ, राग किस कौन करता है, क्या करता है, राग को सुंदर के खाते में रखता हूँ और बातें शुद्ध आत्मा की करता हूँ तो नहीं चलेगा ऐसा। पहले ये सिद्ध कर कि राग सुदगल का नहीं है, राग परद्रव्य का नहीं है, राग परने नहीं होता है, राग तेरे में होता है, तो राग का करता धरता कोई दूसरा नहीं है, राग मेरी गलती से हुआ है, तो राग मेरा ही अपराध है, ये सब स्वीकार कर। और ये सब स्वीकार करते हुए राम से दृष्टि देना बंद कर, उपनिषद पूर्वक राग लेने किया है ना, तो अब कहते हैं अब तूने राग किया है तो मिटा भी नहीं सकता है, जो करेगा वही मिटाएगा, जो काम जिसके द्वारा किया गया हो, जो गलती जिसकी हो, उसको सुधारने वाला कौन, वही सुधारेगा। तो यदि तूने ये स्वीकार किया कि राग मेरा किया हुआ है, तो राग सुधारने का अधिकार भी दीजिए सुधार सकता है, पर यदि तू ये कहता है कि राग पुद्गल का किया हुआ है तो फिर पुद्गल सुधारेगा तो सुधारेगा, तेरा राग नहीं मिट पाएगा, सच्चाई नहीं मिट पाएगा। अब राग को मिटाना है, अब दूसरा एंगल, जिसके ऊपर गुजरे जी ने 45 वर्षों तक खूब अमृत की बरसात की है, वो क्या कि राग को देखने से राग नहीं मिटेगा। अब राग तेरी गलती से हुआ है ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी स्वीकृति पूर्वक राग को देखना बंद कर दे, राग को मत दे, जायक को देख, राग अपने आप मिट जाएगा। 43 दिन जायक भगवान आत्मा को देखेगा तो राग अपने आप मिटेगा, लेकिन इसकी खबर तुझे होनी थी। यदि तुझे इसकी खबर नहीं है और तू इस बात का निषेध करता है, तो ये दो गाथाओं के अंदर इन्होंने स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया, और हर मत विरोधी जानना 347 और 348 गाथा में स्पष्ट शब्दों में कह दिया, तुम सांख्यों जैसे हो, तुम बौद्ध दर्शन वाले जैसे हो, तुम जैन हुए नहीं, तो क्या मानो? आप ही बता दो, कथनचित करता मानो, कथनचित अकर्ता मानो, कर्म का कर्ता मत मानो, कथनचित ये मानो कि जो करता है वही भोगता है, और कथनचित ये मानो करने वाली पर्याय भिन्न है और भोगने वाली पर्याय भिन्न है। पर्याय अपेक्षा की बात करोगे तो करने और भोगने वाले अलग अलग हैं क्या? और द्रव्य दृष्टि से बात करोगे तो जिसने किया है उसी ने भोगा, नहीं फल फल भोगने की बात चल रही है, नहीं तो फल भोगने की चर्चा चल रही है। जो मारीची था वो महावीर नहीं है, जो महावीर हुए वो मारीची नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो 363 मत कितने चलाए तो तुम ये नहीं कह सकते हो महावीर भगवान ने चलाए, कह सकते हो महावीर भगवान ने चलाए 363 मत, नहीं जैसे कह सकते हैं तो नहीं कह सकते ऐसा, तो उन्होंने नहीं चलाए। अरे हाँ उन्होंने चलाए, सुनो भैया वो अलग था, वो पापी था जिससे चलाए थे, और ये धर्म की इससे करता है कीर्तन कर, इसका मतलब पर्याय जिसको आप देखते हो तो वो अलग है और ये अलग है, और द्रव्य दृष्टि से देखते हो तो ये वही जीव है जिस जीव ने भूतकाल में ऐसे पाप किए थे और वर्तमान में जो जीव धर्म से इसका प्रवर्तन कर रहे हैं। दोनों बातें बैलेंस होना चाहिए। देखो अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, इसी संदर्भ में दो कलश दिए हैं बहुत सुंदर, 209 नंबर का कलश देखो आप, 209 नंबर कलश ये आया है 348 नंबर गाथा के बाद, 348 तक की हम चर्चा कर चुके थे, अब 209, 208 और 209 दो हैं, 208 और 209 दो कलश है, बहुत मार्मिक कलश है, अच्छे हैं और बहुत सुंदर बैलेंस रख करके बात की है, पढ़ते हैं देखो अपन। हाँ बहन बोलिए,
हाँ
जहाँ काल की भी जो दो राज न मोता मणि से हार न बनता। बस इसका कहते हैं देखो यहाँ कोई व्यक्ति, अब वो जो बौद्ध वालों की जो चर्चा चल रही थी ना, जो सैनिक वाली है, जो कहते हैं कर्ता अलग था भुगता अलग था, दोनों एक ही नहीं हो सकते, उनके बारे में कह रहे हैं कि साहब तुम लोग ऐसा क्यों मानते हो, तुम लोग ऐसा क्यों कहते हो कि करने वाला अलग है भोगने वाला अलग है, आत्मा को क्षणिक क्यों कहते हैं। तो बौद्ध दर्शन वाले कहते हैं कि हम लोग परम शुद्धता की बात करते हैं। तो क्या मतलब समझ नहीं है हमारी बात बहुत, उन्होंने क्या कहा, हम लोग ऐसी शुद्धता की बात करते हैं जिस शुद्धता में काल कृत आदि बीज ही नहीं है, मतलब लंबे समय तक हो ना उन्हें मिल जाए शुद्धि है, वो जो है इतना एक समय मात्र का, जैसे ही लंबा होगा वैसे अशुद्ध हो जाएगा। क्या कहा इस कलश में, यह आत्मा क्षणिक है ऐसा मानते हैं वो लोग, इस आत्मा को क्षणिक मानते हैं बौद्ध दर्शन वाले। इस क्षणिक क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा क्षणिक मानने की बात परम शुद्ध है, परम सत्य बात कर रहे हैं, और जहाँ काल की उपाधि होगी वो उपाधि अशुद्धता है। तो जहाँ काल की उपाधि भी नहीं है, जब अनादि अनंत आत्मा, क्या अनादि अनंत, अनादि अनंत कहने पर भी उपाधि आती है, अशुद्धता होती है, ऐसा उनके परम सिद्ध वाले बौद्ध। देखो भाई ऐसा है, हमारे यहाँ जनाधर में तो शुद्ध आत्मा की बातें है ही, दूसरे धर्म दर्शनों में भी शुद्ध आत्मा की बातें, इसलिए कहीं आपको भ्रम नहीं हो जाए। बहुत सारे लोग गीता और समय सार इन दोनों को एक जैसा बताते हैं, बहुत लोग हैं दुनिया में वो ये कहते हैं, जैसा आप समय सार में कहते हो ना, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा मरता नहीं है, नित्य है, ध्रुव है, कभी मौत नहीं होती, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, ऐसी बातें बिल्कुल गीता में नहीं कहते, ये बिल्कुल आत्मा की शुद्धता की बात। नैनम चिन्नति शस्त्राणि नैनम भेति पावकः नैनम चैनम चेल रंत्यापो नै शोषयति मारुतः। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, अस्त्र शस्त्र से आत्मा को भेजा नहीं जा सकता, आत्मा को पानी से गीला नहीं किया जा सकता, और आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती, आत्मा तो नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है। बोलो कितनी अच्छी बात है, गीता का श्लोक है, आंखों से देखा नहीं जा सकता, चरण चक्रों से पकड़ा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, शब्द जिसमें नहीं है, वर्ण जिसमें नहीं है, स्पर्श जिसमें नहीं है, गंध वर्ण जिसमें नहीं है, ऐसा ही तो है। समय पर उन्होंने क्या अपनी गाथा है, उन्होंने क्या अपना गाथा के अंदर कहा ना, अरे समझ अभिनंदम अवस्तम के मसदम जान जहनम जीवन जित संठानम, ऐसा ही अर्थ है, अरूप है, अगंध है, स्पर्श है, ये तो गीता में कहेंगे। सुन भैया वहाँ नेगेटिव बात कही है, यहाँ पॉजिटिव को साथ में रख करके नेगेटिव बात कही है। क्या कहा, वहाँ जो बात कही है वो नास्ती नास्ती से, ऐसा नहीं है आत्मा, ऐसा नहीं है आत्मा, ऐसा नहीं है आत्मा, ऐसा नहीं है आत्मा, दिखता नहीं है आत्मा, को छुआ नहीं जा सकता है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है, आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, लेकिन है कैसा आत्मा, हस्ति क्या है, जैसे चैतन्य लक्षण से मुझसे है आत्मा, ये अस्थि पक्ष आत्मा का जो समय कारण उभर करके सामने आया है, ये दुनिया की किसी दर्शन में नहीं, अस्थि और नास्ति से चर्चा करते ऐसा नहीं है, अरस अरुचि अस्पर्शी ये नहीं है, लेकिन चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त है, अरस है, अरूप है, ये तो नास्ति से बात कर दी, लेकिन चैतन्य गुणमय ये आत्मा का अस्थि पक्ष ये यहाँ आता है सामने। इसलिए मुझे अन्य मतावलंबी आत्मा की शुद्धता, और शुद्धता भी कौन सी, परम शुद्धता, 208 कलश में कही है बात, परम शुद्धता कैसी, बोले नहीं नहीं साहब आप काल से भी मत देखो आत्मा को, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, ऐसे कई अपेक्षाओं से अशुद्धता आती है। हम लोग भी कहते हैं ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित नहीं होता, उन्होंने कहते हैं इनके खंड खंड से मत देखो, काल खंड में मत बांधो आत्मा को। आत्मा तो क्षणिक है, एक समय मात्र की है, जैसे ही एक समय से दो समय हो गए बोले वो अशुद्धता है। बौद्ध दर्शन वाले क्या कहते हैं, एक समय मात्र का होना ये शुद्धता है, और आत्मा को दो समय, चार समय, पांच समय ऐसा लंबा मानना ये अशुद्धता है। ये बौद्ध दर्शन वाले कह रहे हैं। अपने न्याय शास्त्रों में ऐसे बौद्ध दर्शन वालों को ऋजु सूत्र नया भाषु कहा है। सुना ऋजु सूत्र नया भाषु, ऋजु सूत्र नए क्या है, ऋजु सूत्र नए तुम नएगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समझी उड़ेगम भूषा नया सतवार सूत्र पहले अध्याय का अंतिम सूत्र है, तैतीसवा सूत्र नएगम नए संग्रह नए व्यवहार नए ऋजु सूत्र नए शब्द समझी उड़ेगम भूषा। सिर्फ ऋजु सूत्र नाम का नए है ना, वो किसे निश्चय करता है, एक समय मात्र की बजाय द्रव्य को वस्तु को एक समय मात्र का देखता है वो ऋजु सूत्र ने, शुद्ध ऋजु सूत्र ने ऐसा कहा अखबार सूत्र ने। लेकिन सुनो वो एक समय मात्र की देखना वो शुद्धता तो है, लेकिन दूसरा एंगल भी है ना जो नित्य देखने वाला। और ये ऋजु सूत्र नया वाक्य जो बौद्ध दर्शन वाले हैं, ये बौद्ध दर्शन वाले ऐसा कहते हैं कि वो चाहिए आत्मा अगले क्षण वाला मत मानो। तो इसके लिए बहुत सुंदर एग्जांपल दिया इसी 208 नंबर कलश में ही, मूल कलश में अमृत चंद्र स्वामी ने, उन्होंने कहा कि ये वैसे ही मूर्ख लोग हैं जैसे हार है, उस हार में जो धागा है ना नेक्स्ट उसको तो छोड़ दिया, और मोतियों मोतियों को ग्रहण करके समझ रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी चीज उपलब्धि कर ली। तो हार के धागे की उपेक्षा करने वाले और मोतियों की अपेक्षा करने वाले जिस तरह से मूर्ख कहलाते हैं, उसी तरह से ये त्रिकालु ध्रुव जाए भगवान आत्मा के नित्य पक्ष को छोड़कर मात्र एक समय के अनित्य पक्ष को ग्रहण करने वाले भी मूर्ख हैं। ये 208 नंबर के कलश में बात कही, अब 209 नंबर के कलश में बहुत सुंदर बात कही, पूरे के पूरे प्रकरण का मानो एक प्रकार से यहाँ पटा पेट कर जो भी हुई ना किताब खोलने ला करके महाराज आप ही बता दो, आत्मा को कर्ता माने कि भोक्ता माने कि अकर्ता माने कि अभोक्ता माने, ऐसा माने ऐसा माने, क्या करें आत्मा को नित्य माने कि अनित्य माने, हैं ये कर्ता करता है कि नहीं करता है, इसका कर्ता भोक्ता, क्या बड़ी बड़ी झमेले कर दिए आपने तो बहुत ज्यादा, कुछ हमारे मगज में नहीं बैठ रही। तो ये बताए क्या कह रहे हैं यहाँ 209 नंबर कलश में, कर्ता भोक्ता में अभेदपना हो या युक्ति वचन से भेद हो, तुम भेद कहो या अभेद कहो या भेदाभेद कहो, दोनों ही बातें कहो, लेकिन जिस तरह से माला को भेदा नहीं जा सकता है उसी तरह से तुम्हारा आत्मा भी अभेद अखंड है, तुम तो उसका अनुभव करो। क्या 209 नंबर के कलश में आत्मा के अनुभव करने की प्रेरणा देगी, त्रिकाली ध्रुव जाए भगवान आत्मा का अनुभव करो, इन विकल्पों में मत उलझो, सर्व प्रकार के विकल्पों का निषेध करके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करने की प्रेरणा दिए। दोस्तों कलश में आत्मा का अनुभव करो तुम तो, कैसे आत्मा का कि भेद अभेद भेदाभेद इन सारे विकल्पों से पार जो अभेद अखंड आत्मा है उसका अनुभव करो। हार में मोती भी है, धागा भी है, धागे के बिना मोती का क्या वैल्यू है, और मोती मोती अकेले तो पहने नहीं जा सकते हैं, तो मोतियों के साथ में धागा होना चाहिए, धागे के साथ में मोती होने चाहिए, मोती और धागा साथ साथ में होने चाहिए, कोई मोती देखता है कोई धागा देखता है, कोई मोती और धागे साथ साथ में देखता है, अरे तुम छोड़ो सब विकल्पों को, तुम तो हार पहन के उसका आनंद लो। क्या बात कह रही है कलश में, और इतनी जो चर्चा चल रही थी इतनी गाथाओं से, काम के वाले ऐसा मानते हैं ऐसा मानोगे तो ये गलती है, ये मानोगे तो निश्चय गलती है, ये मानोगे तो जैनियों का विरोधी है, क्षणिकवाद के अंदर प्रॉब्लम है, नित्यवाद में प्रॉब्लम है, अकर्तावाद में प्रॉब्लम है, कर्ता भूक्ता में प्रॉब्लम है, जो करता है किसी को भोगता माने तो भी गलती है, और जो करता है वो नहीं भोगता है माने तो भी गलती है, करता अलग है भोगता अलग है तो भी गलती है। तो धर्म क्या कि भाई देखो एक एक एंगल से सारी बातें सच्ची है, अपने अपने एंगल से सारी बातें सच्ची है। तो हमें क्या करना चाहिए कि तुम तो उस अभेद्य अखंड आत्मा का अनुभव करो सारे विकल्पों को छोड़कर। ये इन्होंने यहाँ बात कह दी है 209 नंबर के कलश में, देखो बोले थे अपन कलश 209 नंबर
भले भेद हो अथवा दोनों ही ना हो,
देखो क्या कह दिया, जो मणियों की माला भेजी नहीं जा सके, मणियों की माला को जिस तरह से नहीं भेजा जा सकता उसी तरह से हमें भी अभेद्य आत्मा का अनुभव हो, ये भावना भाते हैं, ये प्रेरणा देते हैं। ये कलश हो गया 209 नंबर का। अब जो गाथाएं हैं अपने पास में, सात गाथाओं का ग्रुप है, और जो सात गाथाओं का ये ग्रुप है 349 से लेकर 355 तक की गाथाओं का, उन गाथाओं की उत्थानिका में माने उन गाथाओं में क्या विषय कहने वाले हैं, ये उठाते हुए अमृतचंद्र स्वामी 310 नंबर के श्लोक में बात करते हैं। 210 नंबर के श्लोक में माने ये जो गाथाओं में बात कहेंगे ना, अब सारे अपना चाहिए कर्ता भोक्ता की बहुत बात करिए, अकर्ता अकर्ता की बात करिए, आत्मा करता है या भोगता है, ये करता है या नहीं करता है, क्या है स्थिति, कह रहे हैं देखो व्यवहार से करता है और निश्चय से अकर्ता है। व्यवहार से करता है तो व्यवहार तो झूठा होता है ना, व्यवहार तो झूठा है और निश्चय की बात करती है, इसलिए हमें अकर्ता ही मानना चाहिए, करता नहीं मानना चाहिए। तो कह कि सुन, ये जो कर्तापन है ना ये व्यवहार से है, और उसको नहीं मानेगा तो लोक व्यवहार भी नहीं चलेगा, और उस व्यवहार में भी गड़बड़ी होगी तो उसका फल भी व्यवहार में भोगना पड़ेगा। निश्चय से यदि आत्मा करता नहीं है ऐसा मानेगा तो निश्चय से आत्मा भूखता भी नहीं है, फिर तू रोता क्यों है, डंडे पड़ने से रोता क्यों है, संकट आने से रोता क्यों है, व्यवहार नहीं हो रहा है निश्चय में तो कुछ भी नहीं। यदि तू व्यवहार में ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहता है, तकलीफ से बचना चाहता है, नरक आदि गतियों से बचना चाहता है, निरोध आदि अवस्थाओं से बचना चाहता है, तो हम ये कह रहे हैं ऐसे काम भी मत कर जो व्यवहार से निश्चित है। 210 नंबर के कलश में ये बात कही है, व्यवहार से कर्ता और कर्म भिन्न भिन्न कहे जाते हैं, निश्चय से कर्ता और कर्म भिन्न भिन्न नहीं होते। बस इतनी बात है उस कलश में, व्यवहार से कर्ता अलग होता है और कर्म अलग होता है, लेकिन निश्चय से कर्ता और कर्म ये दोनों भिन्न भिन्न नहीं होते। व्यवहार से कितनी बातें कही जाएगी, समयकार ग्रंथ कितने बनाया, कितने लिखा समयकार ग्रंथ, कुंडाचार्य ने लिखा तो कुंडाचार्य लिख सकते हैं समयकार है? सारे व्यवहार खत्म हो जाएगा आपका। यदि आप व्यवहार से भी कर्ता भोक्तापन नहीं मानोगे तो तुम्हारा सब लोप हो जाएगा, फिर कोई व्यवहार ही नहीं चलेगा, फिर आप हमारा नाम पूछोगे तो हम नाम नहीं बतला पाएंगे, फिर सबके एक ही नाम होंगे, नवीन भाई भी सिद्धात्मा है, किशन भाई भी सिद्धात्मा है, रंजीव मोदा भी सिद्धात्मा है, दिलीप भाई भी सिद्धात्मा है, रजनी भाई भी सिद्धात्मा है, सब सिद्धार्थन है मेरा नाम, तो फिर किस नाम से रसीद बनानी है बड़े सिद्धार्थन, जैसे बुलाने वाले सिद्धार्थन को बुला लो, सभी सिद्धार्थमा है अलग क्यों बुलाने की बात करते, कितनी गड़बड़ी हो जाएगी। तो क्या व्यवहार से कर्ता कर्म पना बनता है, ये काम किसका किया हुआ है, यदि मान लीजिए कपड़े धुले हैं तो धोबी ने धोए हैं, यदि मान लो जूते बने हैं तो मोती ने बनाए हैं, यदि घड़ा बना है तो कुम्हार ने बनाया है, ठीक है ना, लोहार का काम अलग है, कुम्हार का काम अलग है, मोती का काम अलग है, कपड़े सिले हैं तो दर्जी ने सिले हैं, तो आपके योग्य व्यवहार है ये भिन्न कर्ता कर्म वाली जो बात है ये बात पर व्यवहार से लागू होती है। और निश्चय से परम सत्यवाद यदि हम कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि एक दूसरे का करता धरता नहीं होता। फिर घड़ा घड़े ने बनाया तो घड़े का करता कुम्हार नहीं हो सकता, मिट्टी ही घड़े का करता है। इस तरह से निश्चय और व्यवहार इन दोनों में बैलेंस रखने वाली ये गाथाएं हैं। 210 नंबर का जैसे मैंने बोल दिया है इतना ही था क्या यही बात लागू हुई यदि आ रही है तुमने पाप की बात की इन गाथाओं में है ना। कर्ता अलग और कर्म अलग, कर्ता अलग और कर्म अलग व्यवहार से। निश्चय से जो कर्ता होगा उसी का कर्म होगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि यदि मैं जायक हूँ तो ज्ञान क्रिया का ही कर्ता हो सकता हूँ, मैं देह का कर्ता नहीं हो सकता। तो देह के कर्ता आप नहीं है तो ऐसा मानकर कोई व्यक्ति रात्रि भोजन करने लगे ये जड़ की क्रिया है, ऐसा कहकर के कोई मध्य मास आदि का सेवन करने लगे जड़ की क्रिया है। आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा जड़ की क्रिया का कर्ता नहीं है। और शराब की बोतल सामने रखी है गिलास में लेके पी रहा है, आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा पीता ही नहीं है, आत्मा तो भिन्न है। ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। व्यवहार से तुम ही करता हो और व्यवहार और निश्चय ये दोनों का बैलेंस रख करके बात करनी पड़ेगी आपको, साथ में चलेंगे। 14वें गुणस्थान तक व्यवहार का व्यवहार राशि में जाने लें तो 14वें गुणस्थान तक के ही सिद्ध भगवान व्यवहारातीत कहलाते हैं। व्यवहारातीत तो सिद्ध भगवान उससे पहले बड़े व्यवहार लागू हुआ, सब व्यवहार करेगा, व्यवहार के कतरी किए जाएंगे। श्रद्धा यदि करनी है तो निश्चय नय की श्रद्धा करना, निश्चय स्वरूप विषय की श्रद्धा करना, व्यवहार का निषेध नहीं करना। व्यवहार का निषेध नहीं और श्रद्धा भी नहीं, व्यवहार का निषेध भी नहीं और व्यवहार की श्रद्धा भी नहीं, दोनों बातें होनी चाहिए। और निश्चय का विकल्प नहीं, समझ में आ रही है बात, निश्चय स्वरूप वस्तु की श्रद्धा और उसमें लीनता और अभेद अनंत आत्मा की अनुभूति, ये काम करने योग्य है। ये दाताओं से मेरी बात कह रहे हैं, कर्ता कौन है, कर्म कौन है, कर्म क्या है, पर के कर्ता कर्म करण की बात करते हैं तो व्यवहार है और निश्चय से ऐसा भी होता नहीं है। 349 नंबर का था शिल्पी का एग्जाम्पल देकर के बात कही। जो शिल्पी कर्म करे परंतु कर्म मय कहना बने, जो जीव कर्म करे परंतु कर्म मय बहना बने, जो शिल्पी करे करे पर कर्म मय बहना बने, क्यों जीव करणों के करे पर करण मय बहना बने, जो क्या कह दिया यहाँ तक 352 नंबर गाथा तक सब व्यवहार का कथन। और ये 353 नंबर गाथा है ना, ये 353 नंबर गाथा जोड़ने वाली गाथा है जिसमें कुछ नहीं है। 353 नंबर गाथा का कोई विषय नहीं है। 353 नंबर की गाथा में तो इतना कहा है कि अभी तक जो कहा है वो व्यवहार से कर जाए और अब जो कहेंगे वो निश्चय से कहेंगे, वही 353 नंबर गाथा। गाथाओं के विभाजन से और बीच बीच में टीकाएं तो अपन देखते हैं, आचार्य कुंड स्वामी ने तो खंडन लिखा है ना, पूरा प्रकरण कंटिन्यू लिखा है ना, वो तो तो उस बीच में जो भी बात कहनी होती है उसी तरह से कहते क्या क्या बातें कहनी। देखो शिल्पी, शिल्पी कौन? रचना करने वाला। कौन सी रचना करने वाला? कोई भी रचना करने वाला हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुम्हार भी हो सकता है, सुनार भी हो सकता है, मूर्तिकार भी हो सकता है। वो शिल्पी है जो बना रहा है, वो कर्म करे। मान लो शिल्पी कोई भी एक व्यक्ति ले लो आप, मूर्तिकार की बात की थी सुबह, तो मूर्ति बनाने वाला लिया, तो कहा कि वो कर्म करे। शिल्पी माने मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला, और कर्म उसका है मूर्ति, ठीक है ना? दो हो गए ना, शिल्पी और वो कर्म उसका। परंतु वो कर्ममय नहीं होता। मूर्तिकार जिसने मूर्ति बनाई है वो मूर्तिमय तो नहीं होता है, मूर्ति तो अलग ही रहती है। शिल्पी कर्मों को करे परंतु वो कर्ममय नहीं होता। उसी तरह से यह जीव भी कर्मों को करे, पुद्गल कर्मों का करता है, लेकिन पुद्गल कर्मों रूप नहीं होता। क्या पुण्य पाप आदि कर्मों का करता है ये जीव, द्रव्य कर्मों का करता है। कैसा यहाँ द्रव्य कर्मों के कर्ता की बात कह रहे हैं सर माने, लेकिन ये द्रव्य कर्मों मय नहीं है। तो इसलिए क्या कहेंगे कि इस बात को आगे चल के कहेंगे कि जवार है, इस जीव ने पुण्य किया, इसने पाप किया, इसने पुण्य बांधा, इसने पाप बांधा। कहते हैं ना ऐसा कि पुण्य बांध रहा है, पाप बांध रहा है, हिंसाई को पाप बांध रहे हो, तो ये हम ही बांध रहे हैं कि नहीं पुण्य और पाप? तो पुण्य पाप यदि हम बांध रहे हैं तो हम पुण्य पाप कर्मों से करता है या नहीं? ये कह रहे हैं उसी तरह से करता है जिस तरह से मूर्ति बनाने का करता वो मूर्तिकार है। वो मूर्ति बनाने का करता कोई नाई नहीं है, धोबी नहीं है। मूर्ति बनाने का करता कौन? मटका बनाया, घड़ा बनाया, तो घड़ा बनाने का करता कौन? धोबी, मोची, नाई, बढ़ई, कारपेंटर, प्लम्बर, कौन होगा? कुम्हारी होगा घड़ा बनाने का करता। मैं ये कुम्हारी घड़ा बनाने का करता है ये बात याद कर, लेकिन वो व्यक्ति क्योंकि घड़े मय नहीं होता, क्या इसलिए ये बात आपके उपयोग में साथ में रखना सावधानी से। वो घड़ा बनाता है लेकिन घड़ा मय नहीं होता, इसको साथ में रखना अपने दिमाग में। स्वर्णकार ने, सुनार ने गोल्ड के ऑर्नामेंट बनाए, ठीक है ना, लेकिन उसका कुछ भी अंश गोल्ड में नहीं मिल गया, ठीक है, अपने में से कुछ भी नहीं मिलाया उसने, वो अलग था और ये अलग था। इसी तरह से जीव ने कर्म किया लेकिन कर्म मय नहीं हुआ, ठीक है। ये गाथा हुई 349। फिर 350 नंबर गाथा में कहते हैं मुझे शिल्पी था ना, वो कैसे बनाता था मूर्ति? अपने साधनों से बनाता था, औजार से बनाता था, हथियार से बनाता था। तो उसने अपने औजारों से वो मूर्ति बनाई, लेकिन औजार से वो भिन्न है बनाने वाला व्यक्ति। ये बात ख्याल है बिल्कुल, वो उसको बनाता है साधनों से, बनाता है अपने औजारों से बनाता है, लेकिन औजार अलग है और वो शिल्पी अलग है। इसी तरह से ये जो कर्म करने वाली बात थी ना, पुण्य पाप करने वाली बात थी, ये पुण्य पाप जीव ने किए किस साधन से किए? बोले अपने मन वचन काय से किए। ये करण है, मन वचन काय को कहा जाता है करण। इस जीव ने अपने मन से, अपने वचन से, अपनी काय से ये कर्म किया, लेकिन मन वचन काय रूप नहीं हो गया। क्या कहा? शिल्पी करणों से करे, करणमय वह ना बने। क्यों? जीव करणों से करे पर करणमय वह ना बने। जीव भी करणमय नहीं होता है, मतलब जीव भी मन वचन काय रूप नहीं होता है। फिर आगे 351 नंबर गाथा में क्या कहा? शिल्पी करणों को ग्रहे, साधन से ना उन सबको ग्रहण करता है, उठाता है, धरता है, औजार को उठाता है, शैली उठाता है, हथौड़ी से छोड़ता है, कर्णों को ग्रहण करता है, उसको मैं नहीं बनता। लेकिन उसी तरह से जीव भी मन वचन काय को ग्रहण करता है, शरीर धारण करता है, लेकिन शरीर मय नहीं होता है। हम बिल्कुल उससे यदि बैलेंस नहीं रखेंगे तो मैं गालियां दूं, क्या आप शब्द कहूँ आपको और आपको पंडित जी अच्छी बात नहीं है, और मैं कहूँ देखो भैया भाषा वर्णन का कर्ता मैं नहीं हूँ। अगर आप ज्यादा मार के कहोगे कि मैं भी गरीब की पीड़ा का कर्ता नहीं हूँ, ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा नहीं माना जा सकता है। यद्यपि यह परम सत्य है कि जीव भाषा वर्णन का कर्ता नहीं है, और उस परम सत्य से ही तेरा प्रयोजन सिद्ध होगा। इसलिए हमारे जो वक्तागण है, जो भी विद्वान है, उसे इस बात को कहने से मतलब क्या, जिससे तेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा? तो बात ठीक है, तो उसकी स्वीकृति पूर्वक आप उसका निषेध करो। आप देखो व्याख्यानों में भी बार बार में जब ये खुलकर के बात सामने आती है कि तू जड़ की क्रिया का कर्ता नहीं है, जड़ की क्रिया का कर्ता नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम स्वच्छंद प्रवर्तन का पोषण कर रहे हैं, मन वचन काय की क्रिया का सर्वथा निषेध कर रहे हैं। वो तेरा ही योग और उपयोग उसमें निमित्त बनता है। तो हमारे योग से हुआ, आप यदि कर्ता नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप आत्मा को तो यहाँ भेज दो और शरीर को वहीं रखो रूम से आराम करने दो। शरीर तो सकता ही है ना। कई लोग बात करते हैं दिन भर सुबह से शाम तक यहाँ शिविर में बैठे रहते हैं, सब कुछ भी हो लेकिन शरीर तो सकता ही है। हम भले सोना नहीं चाहते, हम कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन शरीर तो सकता ही बैठे 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 ऐसे थकान किया कुछ नहीं है, हमने फिर बैठे ही रहे, लेकिन फिर भी शरीर तो सकता ही है ना। शरीर सकता है तो एक काम करना, फिर आप शाम के प्रवचन में आप शरीर को तो घर से आराम करने के लिए छोड़ देना और आत्मा को यहाँ ले आना प्रवचन करने के लिए, तो ये हो सकता है। तो व्यवहार के उस शरीर के साथ साथ में आत्मा रहता है। व्यवहार से आपको ये मानना पड़ेगा कि वो कर्म आत्मा को वहाँ ले जाते हैं, लेकिन निश्चय से परम सत्य ये है कि कारवां वर्गणाओं के उदय में भी कारवां वर्गणा रूप कारवां शरीर के पास में होते हुए भी आत्मा अपनी क्रियावर्ती शक्ति से जा रहा है और उसके पास में लगे हुए कर्म अपनी क्रियावर्ती शक्ति से गमन कर रहे हैं। ये परम सत्य ख्याल में होना चाहिए। ऐसी बातें कह रहे हैं देखो 351 हो गई, अब 352 नंबर खाता है क्या कहते हैं? शिल्पी भोगे कर्म फल। कर्म फल को भोगने का मतलब उसने मूर्ति बनाई, उसका फल भोगता है, उसको मजा आता है, अच्छा लगता है, ये काम हो गया। उसने सुनार ने बनाए आभूषण बनाए, वो उसका फल भोगता है, उसका सुख दुख भोगता है, प्रसन्न होता है, खेल चिन्ह होता है, अच्छा बन जाता है तो प्रसन्न होता है, खराब बनता है तो दुखी होता है। उसके द्वारा जो कर्म किया गया था उस कर्म के फल को शिल्पी भोगता है। उसी प्रकार क्यों जीव भोगे कर्म फल, पुण्य पाप कर्मों का फल जीव ही भोगता है। नरक विरोध में जाकर के जीव को ही भोगना पड़ेगा, जीव ही भोगता है। लेकिन कर्म फल को भोगते हुए भी जीव उससे तन्मय नहीं होता, जिस तरह से शिल्पी मूर्ति से तन्मय नहीं होता। ठीक है, अभी जो 352 नंबर तक गाथा में ये जो बात कही गई, व्यवहार व्यवहार की बात कही है चारों गाथाओं में। अब कह रहे हैं 353 नंबर गाथा में, भाई साहब हमने संक्षेप में सारा कथन दर्जा दिया तुम्हारे, लेकिन जो कथन दर्जाया है ये सब व्यवहार का था। अब जो परमार्थ का कथन है, परिणाम विषयक, कौन किसका परिणाम है, किसने क्या काम किया, ये जो एक्चुअल पोजीशन है वो हम आगे की दो गाथाओं में बतलाते हैं आपको। तो 354 और 355 इन दो गाथाओं के अंदर कहते हैं, शिल्पी करे जो चेष्टा उससे अनन्य रहे सदा, जीव ही जो करे वह उससे अनन्य रहे सदा। क्या कहा? शिल्पी जो चेष्टा कर रहा है ना उससे अनन्य है। और अभी दो चीजें होंगी, देखो बहुत ध्यान से सुनना क्या कह दिया उन्होंने, कुछ बात गड़बड़ हुई, ऊपर क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं शिल्पी जो बना रहा था मूर्ति उससे कहा अन्य है। कौन सी गाथा में? पीछे कहा था कि वो उसमय नहीं होता, शिल्पी अन्य है और मूर्ति अन्य है, दोनों अन्य अन्य है। अब यहाँ कह रहे हैं शिल्पी उससे तो अन्य है, लेकिन जो उसके हाथ पांव चलने के लिए चेष्टा हो रही है वो चेष्टा से तो वो अनन्य है, एक है। जिस तरह से मूर्ति और शिल्पी अलग अलग है, उसी तरह से शिल्पी की चेष्टाएं हाथ पांव चलने रूप जो चल रही है वो उससे अन्य नहीं है, वो तो उसी की है। देखो क्या कहा, शिल्पी करे जो चेष्टा, शिल्पी ने जो चेष्टा की है, क्रियाकलाप जो उससे हो रहे हैं उससे वो अन्य है। उसी तरह से जीव भी जो करता है उससे वो अनन्य होता है। अब जीव की चेष्टा कौन सी है, उसने कर्म बंधन ने उन्हें राग दे दिया, तो जीव उससे अनन्य। ऐसा नहीं कर सकते आप कि राग को निकाल कर अलग धर दो, समझ आ रही है बात। उस चेष्टा में मग्न शिल्पी, हाथ पांव की चेष्टा कर रहा है उसमें भी शिल्पी मग्न है, वो नित्य उसके दुख को भोगता है। काम कर रहा है तो थकान होती है, तकलीफ भोगता है, करना पड़ता है, आंखें जलती है, हैं हाथ पांव दुख जाते हैं दिन भर काम करते करते, तो चेष्टा से दुख को भोगता है। उसी तरह से जीव भी नित्य ही दुख भोगता, किसके, अपने रागादी परिणामों रूपी कर्म के दुख को भोगता है। देखो भाई बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं शिल्पी जो दुख भोगता है वो उसका दुख नहीं भोग रहा, वो अपनी चेष्टा का दुख भोग रहा है। ऐसे ही निश्चय से देखा जाए तो जीव जो दुख भोगता है वो अपने परिणाम का दुख भोगता है, कर्म के दुख को नहीं भोगता। ये जड़ कर्म के दुख को नहीं भोगता। अभी देखो मैं यहाँ गुरुदेव को लाया हूँ साथ में, क्या, क्योंकि गुरुदेव अपने लिए बिल्कुल परम पुरुष है। हमारे लिए तो इस युग में यदि जिनागम के मर्म को खोलने वाले कोई है तो वे गुरुदेव जी है, क्योंकि इतनी बातें कही ना, इससे आपको ऐसे लग सकता है यार आप कैसी कैसी बातें कहते हो, हमने तो कभी ऐसी बातें सुनी नहीं। तो तुम एक बार गुरुदेव के व्याख्यान इन गाथाओं पर सुनो, वो क्या कहते हैं, मैं पढ़ता हूँ गुरुदेव की ये पंक्तियाँ। यहाँ लिखा है इन गाथाओं का, सारी गाथाएं जो मैंने पढ़ दी 355 तक, इन गाथाओं के भाव में गुरुदेव जी क्या कहते हैं, इनका मत बोलते हैं। तात्पर्य यह है कि गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव का वचन पढ़ रहा हूँ, चौथे रचना करते ठीक है। अज्ञानी जीव परमे हर्ष शोक से भाव करता है, अज्ञानी परमे पर को देख रहा है पैसा आ गया तो हर्ष शोक से भाव करता है, पैसा चला गया शोक के भाव कर रहा है, हर्ष का भाव कर रहा है। अज्ञानी जीव परमे हर्ष शोक से भाव करता है तथा उन्हें भोगता है, परंतु परद्रव्य को अर्थात स्त्री पुत्र धन मकान आदि का ना तो करता है और ना भोगता है। तो फिर किसको भोगा, अपने परिणाम को भोगा, हर शोक के भाव को भोगा, उसने उसको नहीं भोगा। फिर आज जो धन आया ना आपके पास में, आपको धन आने की प्रसन्नता नहीं है, आपका जो हर्ष का भाव हुआ ना उसके सामने दिखाई देने पर, उसके बगल में रहने पर, उसका अपने पास में होने पर जो हर्ष और शोक का परिणाम होता है, आप तो उस परिणाम को भोगते हो, क्रिया को नहीं भोगते। नहीं समझ में आई ये बात, बहुत मोटी मोटी बातें स्कूल बातें, मैं नहीं कह रहा आप कहूंगी आप तो स्कूली बातें करते हो, कुलकुल स्वामी की बात कह रहा हूँ, इतनी सरल बात कह रहे हैं। क्या कही इन्होंने बात, जैसे मान लो कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जवान बेटा मर गया है, अब वो व्यक्ति अच्छे मेवा मिष्ठान पकवान बने हैं वो खा रहा है, तो उसके फल को भोग रहा है कि नहीं, कि उसको नहीं भोग रहा वो, क्योंकि उसके अंदर में परिणाम जो चल रहे हैं तो उसको भोग रहा है, वो दुखी है। क्यों दुखी है वो, क्योंकि वो फल को तो कोई भोगता ही नहीं है, उसी विषय का सेवन करता हुआ एक व्यक्ति आनंद मान रहा है और उसी विषय का सेवन करता हुआ वो दूसरा व्यक्ति दुख मान रहा है। इसका मतलब विषय में सुख और दुख नहीं है, सुख और दुख तो तेरे परिणामों में है, सुख दुख वस्तु से नहीं है, सुख दुख परिणामों से है। संयोग जो बनते हैं वो उदय अनुसार बनते हैं और जो सुख दुख होते हैं वो परिणाम अनुसार होते हैं। संयोग उदय अनुसार और सुख दुख परिणाम अनुसार। देखो आगे क्या कहते हैं गुरुदेव, ज्ञानी जीव को अंतरंग में स्वभाव का अर्थात शुद्ध एक जायक भाव का भान हुआ है, इस कारण वह स्वभाव दृष्टि से रागादि भावों का कर्ता भोक्ता नहीं होता, क्योंकि उसे स्वभाव का भान हो गया है। तथापि ज्ञानी के जितना राग रूप परिणमन है उतने परिणमन की अपेक्षा से उसे भी कर्ता बना तथा भोक्ता बना है ज्ञानी के भी। गुरुदेव की लाइनें बताओ ने, गुरुदेव ने क्या कहा है यहाँ पे, ज्ञानी के जितना राग रूप परिणमन है उतने परिणमन की अपेक्षा उसे कर्ता तथा भोक्ता बना है। ज्ञानी स्वभाव की दृष्टि से राग का कर्ता नहीं है, स्वभाव से दुख का भोक्ता नहीं है, ज्ञानी राग का कर्ता नहीं ज्ञान स्वभाव दृष्टि से, ज्ञानी दुख का भोक्ता नहीं स्वभाव दृष्टि से, परंतु क्या कहते हैं गुरुदेव, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, परंतु इससे कोई एकांत पकड़ कर ऐसा माने कि ज्ञानी के कर्म का दुख होता ही नहीं तो ये बात नहीं, दुख होता है उसको, जितने अंश में राग है उतने अंश में ज्ञानी को भी दुख होता है, उतने अंश में उसको भी तकलीफ होती है। ज्ञानी के जितना किंचित राग है उतना उस समय दुख है और वह उसका उतनी मात्रा में कर्ता एवं भोक्ता भी है। यहाँ तो इस समय अज्ञानी की बात चलती है कि अज्ञानी जीव स्व परिणामात्मक राग से परिणाम का कर्ता है तथा उसके फल स्वरूप जो हर्ष विचार होता है उसका भोक्ता है, परंतु पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता तो अज्ञानी ही नहीं होता। भाई साहब ये जो गाथाएं चल रही है इन गाथाओं का मर्म यही है, निष्कर्ष स्वरूप बात ऐसी कहते हैं कि जो आगे वाला कलश है ना जिसके साथ में जुड़ा है 211 और 212 नंबर कलश, 211 के अंदर ये कह दिया, दो तीन मिनट में खत्म करता हूँ बात, और चार से लेंगे ना, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, अरे कभी कोई कर्म कर्ता के बिना नहीं होता, निश्चय से परिणाम परिणामी का ही होता है, सदा बदलता रहता है यह परिणामी द्रव्य, वस्तु की स्थिति कभी भी एक रूप नहीं रहती। ये 211 में बात कही, अब 212 में वो मर्म बतला दिया कौन सा, ये सुनो ये जय भगवान आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्ति संपन्न है जय भगवान आत्मा, त्रिकाली गुरु जय भगवान आत्मा अनंत शक्ति संपन्न होने पर भी अनंतानंत शक्तियां होने पर भी उन अनंतानंत शक्तियों में से इस भगवान आत्मा में एक भी शक्ति ऐसी नहीं है कि ये पर क्या कुछ भी कर सके। इनके मूल गाथा में मूल श्लोक में यद्यपि आत्म राम शक्तियों से चोटते है और रोकता है बाहर बाहर पर द्रव्यों में पर प्रवेश नहीं कर सकता उन द्रव्यों में, फिर भी आकुल व्याकुल होकर के क्लेश पा रहा है। जो क्लेश पा रहा है ना इस क्लेश का कारण ये कि तू पर द्रव्यों में रोकता है, तू आनंद की शक्ति संपन्न प्रभु है, परमात्मा है, जायक है, त्रिकाली रूप है, अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा है, तो काय को पर पदार्थों की तरफ देखता है, पर पदार्थों में तेरी करने धरने की कोई शक्ति है नहीं और तू करना धरना चाहता है तो कर पाता नहीं है और तकलीफ भोगता है, तो क्या करें ये बता दो कि भैया सुनो इस पूरे प्रकरण का सार यही है, निष्कर्ष करू सारी गाथाओं का सार जो अपना ये प्रकरण चला है यहाँ 321 से 355 तक, इन पूरी गाथाओं का सार यही है, पर के कर्ता धर्तापन का विकल्प छोड़ो, तेज ज्ञाता दृष्ट का भाव लूटते रहो, तू परता करता धर्ता नहीं है, अपने राग परिणाम का कर्ता तू स्वयं है और अपने जय भाव की दृष्टि करके अपने राग भाव को मिटाने का कर्ता भी तू स्वयं है। ये इतनी सुंदर बात निकल करके सामने आ गई है कि तुझे तेरा राग मिटाने के लिए किसी ईश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुझे अपना राग द्वेष कचाए नित्यात्वादी मिटाने के लिए पर का अवलंबन लेने की जरूरत नहीं है, ये रागादिक जो हुए हैं ये तेरी भूल से तेरे लिए हुए हैं और तू अपनी भूल मिटा करके इनसे मुक्त हो सकता है। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। इसलिए भाई ये जो शिविर जो अपना यहाँ 8 दिन का लगाया है, इस 8 दिन के शिविर में यही बात राजा जी भावों को मिटाने के लिए प्रयोजन भूत है कि अपने त्रिकाली गुरु जो है भगवान आत्मा, जिस भगवान आत्मा में राग नहीं है, जो राग से पार है, निश्चय से देखो तो त्रिकाली गुरु जो है भगवान आत्मा उसमें राग नहीं है, उसमें विकार नहीं है, वो त्रिकाल शुद्ध ऐसा जो है भगवान आत्मा है, राग की स्वीकृति पूर्वक वो त्रिकाल शुद्ध जो है भगवान आत्मा दिखे, और राग होने पर भी राग दृष्टि का विषय न बने, त्रिकाली गुरु जो है भगवान आत्मा हमारी दृष्टि का विषय बने, तो बाहर में जो राग है वो राग अपने आप में किया था, वो राग पैदा ही नहीं होता। राग मिटाने का मतलब ही यही है कि अगले समय की पर्याय में राग उत्पन्न नहीं होता। क्या होता है, हमारे ज्ञान की पर्याय में जब नहीं झलकते हैं तो झलकने वाले जीवों के साथ में जो तादात्म्य बना होता है, ज्ञान पर्याय में ये झलक रहे हैं, अब जो गेज झलके उन जीवों के साथ में अज्ञानी जीव ऐसा अनुभव करता है कि ये नहीं, ऐसा जिसने अनुभव किया वो दुखी होता है, और ज्ञानी ऐसा मानता है कि गेयों के झलकने पर भी वो गेय भिन्न है, और जो ज्ञान दर्पण है वो निरंतर स्वच्छ ही है, वो स्वच्छता पर जिसकी दृष्टि होती है उसको वो रागादी के परिणाम जो झलकन जो बन रही थी वो भी सब मिट जाती है। सहज वस्तु का इस तरह का स्वरूप है, तो हम सभी एकमात्र त्रिकाली गुरु है भगवान आत्मा की आराधना पूर्वक इन रागादी का अभाव करें, ताकि कर्ता कर्तापन के जो विकल्प उठते हैं, ये विकल्प के कर्ता तो तुम हो, और आगे से ये विकल्प भी तभी तक उठते हैं जब तक तुम्हें लगता है मैं कर सकता हूँ। जब समझ में आ गई कि मैं कर्ता धरता नहीं हूँ तो विकल्प उठना भी बंद हो जाएगा। जब पर के कर्ता धरता संबंधी विकल्प भी टूट जाएंगे तो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी ही होगी। दृष्टि के स्वभाव सन्मुख करने की विधि यही है, दृष्टि पर की तरफ जाती है ना, तो दृष्टि पर की तरफ इसलिए जाती है कि हमें लगता है यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से सुख मिलेगा, मैं इसमें कर सकता हूँ, और आज ये समझ में आ गया यहाँ सुख नहीं है और मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो अब आपकी दृष्टि वहां क्यों जाएगी। तो जब दृष्टि पर में जाती नहीं है तो दृष्टि अपने आप ही स्वभाव सन्मुख होती है, और जिसकी दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती है उसकी दृष्टि में अतिंद्रिय आनंद के झरने झरने लगते हैं, ऐसे अतिंद्रिय आनंद के झरने सबके उपयोग में सबकी दृष्टि में प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ।